الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے. اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور آج کل معاشرت کے ابواب چل رہے ہیں جس میں امر بالمعروف نہی منکر پہ بات گزشتہ ہفتے سے ہو رہی ہے. اس میں تبلیغ کی حقیقت بتائی گئی ہے، تو آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہاتھ سے تبلیغ. یعنی ہاتھ سے تبلیغ کیا ہے؟ ویسے تبلیغ کا معنی جاننا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغا، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پہنچانا جو ہے نا وہ ہے. تو اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے مجھ سے ایک آیت بھی اگر سنی ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات کسی اور کو معلوم ہو صحیح اچھی تو دوسروں تک پہنچائے گا تو تبلیغ ہو جائے گا. تو تبلیغ تو ظاہر بہت عام لفظ ہے، اس وجہ سے اس کو کسی خاص یعنی اس میں وہ کرنا کہ بس یہی تبلیغ ہے اور اس کے علاوہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تنگ نظری کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ تبلیغ کی مخالفت ہے. کیسے؟ بھئی اگر آپ کوئی دین کی بات کسی کو پہنچا رہے اور آپ اس کو تبلیغ نہیں مان رہے تو یہ تو دین کی مخالفت ہوئی نا. تو دین کی مخالفت تو دین پھیلانے کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں ہوا، تو تبلیغ کی مخالفت ہو گئی. تو اس وجہ سے تبلیغ جو ہے نا وہ بات. اب اس میں یہ بات ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے دین کو پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ دوسرے لوگوں تک. مثلا مؤذنین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنی اذان سے، مجاہدین تلوار سے، علماء کرام دلائل سے، اور جو مشائخ ہے وہ اعمال قلب کے ذریعے سے. تو یہ سارے تبلیغ ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، جس کو جو رنگ زیادہ سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق کام کرے، اور جو باقی رنگ ہے تبلیغ ہے تو اس کو بھی تبلیغ ہی مانے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرے، تو یہ پھر تبلیغ ہو جائے گی. کیونکہ تبلیغ کے ساتھ تعاون بھی تو تبلیغ ہے نا. مثلا کوئی شخص تبلیغ کر رہا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اپنے گاڑی میں اس کو لے جاتے ہیں اور وہ کسی کو دعوت دیتا ہے، تو کیا وہ تبلیغ نہیں کر رہا؟ یا کسی کو کوئی کرایہ دیتا ہے، کسی عالم کو، وہاں پر وہ بیان کرے گا، تو یہ تبلیغ ہے. تو یہ ساری چیزیں تبلیغ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ہاتھ سے تبلیغ. ہاتھ سے تبلیغ کی اجازت صرف حکام کو ہے، عوام کو نہیں، کیونکہ اس میں فتنہ کا احتمال ہے، بس اس سے فساد ہو سکتا ہے، جبکہ تبلیغ کا مقصد اصلاح فساد نہیں. لیکن حکومت کی بھی قسمیں ہیں، بے باپ کو بیٹھے پر، شوہر کو بیوی پر حکومت حاصل ہے، اس لیے اگر ہاتھ سے تبلیغ ممکن ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. حدیث شریف میں جب لوگ معصیت مبتلا ہو جائے، ان میں سے ایسے لوگ موجود ہو جو ان کو معصیت سے روک سکے، مگر وہ کاہلی کر پر ان کو معصیت سے منع نہ کرے، تو اختلاف ان پر عذاب نازل فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک قصبہ پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے، ان کے اعمال انبیاء جیسے تھے، مگر اتنا نقص تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا تھا، اور امر بالمعروف نہی منکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہذا وہ ہلاک کر دیے گئے. इससे मालूम हो कि अगर किसी जगह पर किसी कोई किसी के नाजायज़ काम को तवा दे के और खामोश बैठा रहे तो इस गुनाह में वो शरीक समझा जाएगा। बस इन गुनाहों से न सिर्फ ख़ुद बचना ज़रूरी हुआ बल्कि दूसरों को भी बचाना ज़रूरी हुआ। अब यहाँ पर तबलीग की दूसरी सूरत है। एक सूरत तो अम्र बिलमारूफ़ है, ये नेकी का काम करना, और दूसरा है बुराई से रोकना। अब जो बुराई से रोकने वाले हैं तो ये भी तबलीग है, क्योंकि मनफी को रोकना ये मुसबित है। हाँ जी, यानी अगर आप गलत काम को रोकते हैं तो ये अच्छा काम है। हाँ जी, तो ये इस तरह मतलब जाना, ये अगर कोई बुराई से रोकता है तो ये तबलीग है। और ज़ाहिर मतलब जो अम्र बिलमारूफ़ करने वाले हैं वो भी तबलीग है। तो नहल मुनकर वाले अम्र बिलमारूफ़ वालों को भी तबलीग समझे और नहल अम्र बिलमारूफ़ वाले नहल मुनकर वालों को भी तबलीग समझे, यानी दोनों एक दूसरे को माशाल्लाह मान लें। और यहाँ जो हदीस शरीफ में आता है तो ये तो नहल मुनकर पे अजाब आया हुआ है कि जो चौड़ा तो उस पर मतलब जैन हुआ है। इससे मालूम है कि जब पर कोई नाजायज़ कामों को होता देखे और खामोश बैठा रहे तो उस गुनाह में वो शरीक समझाए। पैसे इन गुनाहों में न सिर्फ ख़ुद बचना ज़रूरी है बल्कि दूसरों को भी बचाना ज़रूरी हुआ। ज़बान से तबलीग, इज्तिमाही तौर पर ज़ुबान से तबलीग का मतलब है कि मौआज़ हसना के ज़रिए लोगों को अच्छे कामों की तलकीन करे और बुरे कामों से मना करे। लेकिन इसमें हिकमत की कैद लगाई गई, बस तरीके से बात की जाए कि लोगों को फ़ायदा हो, इस काम को सीखा जाए और मशवरे से काम किया। जहाँ बात करनी हो वहाँ के हालात अगर मालूम ना हो तो पहले मालूम करें। ज़ुबान से तबलीग में कलम के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से तबलीग भी शामिल है, क्योंकि आजकल के दौर में मौसर तरीके हैं। अलबत्ता इस बात का याद रखना चाहिए कि जो काम अच्छा है तो उसको अच्छे ज़रिए के साथ करना चाहिए, नाजायज़ ज़रिए के साथ नहीं करना चाहिए, क्यों तो फिर नाजायज़ काम खुद वही हुआ। हाँ जी, मसलन अगर किसी यानी बड़ी नजासत को छोटी नजासत यानी पेशाब से धोया जाए तो क्या पाक हो जाएगा? नापाक तो नहीं होगा, वो भी नापाक ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई ऐसा नाजायज़ काम करते हैं जिससे आप किसी बुराई को रोकते हैं तो बजाय तो खुद वो नाजायज़ है, तो इसको फिर कौन रोकेगा? लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक काम। हाँ, अलबत्ता लोगों के मिजाजों के मुताबिक हिकमत से काम लेना चाहिए। कल्लमुन्नासा बिकद्र उकूलिहिम, लोगों के साथ उनके अकल के मुताबिक कदम करो, यानी जितनी अकल उनमें है उसके हिसाब से, सादा आदमी को सादा तरीके से और जो आलिम आदमी है उसको इल्मी दलाल से, और जो कोई मतलब ऐसा हो जो कि ज़रा डिटेल में गुफ्तगू करने वाला तो उसको उस तरीके से, हर एक को अपने अपने तरीके से समझाना होगा। बल्कि सारे आदमी को अगर आप डिटेल तरीके से समझाएंगे तो काम नहीं होगा, वो समझेगा ही नहीं, हम खबर हो जाएगा। और जो डिटेल वाला है उसको अगर सारे तरीके से समझाएंगे तो काम नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको समझेगा ही नहीं। तो इस वजह से हर चीज़ के बारे में इन चीज़ों के ख्याल रखना है। तो इस वजह से इसके आदाब और शरायत है, जिस चीज़ की तबलीग करना हो उसके अहकाम तफसील से मालूम हो। अपने नफ्स को खुश करने के लिए नसीहत ना हो बल्कि उससे मकसूद सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनूदी हो, और नसीहत करते हुए तरीका मुशफिकाना हो। ये उससे शफकत फूट पड़ती हो, मालूम होती हो कि शफीक मले मुझ पर शफकत फरमा रहे। तबलीग के सिर्फ तबलीग मकसूद समझे, समरात पर नजर न रखे, क्योंकि इनका हुसूल गैर अख्तियारी है और गैर अख्तियारी में कावश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टारगेट उसको रखें, लेकिन मतलब यह है कि उसको नतीजे के तौर पे ना लें। अलबत्ता उसके लिए जो ज़रिया ढूंढना चाहिए उस ज़रिए के ऊपर मतलब अपने बस के मुताबिक زور دے اور باقی یہ کہ نتیجہ خدا پہ چھوڑے. دیکھیں بہت سارے پیغمبر آئے, ان کی بات لوگوں نے نہیں سنی, بلکہ بعض پیغمبر تو پیغمبری کے مطلب اعلان کے ساتھ ہی شہید کر دیے گئے. تو کیا وہ کامیاب نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ تو کامیاب ہے, لیکن جن لوگوں نے نہیں لیا ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں, وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بعض لوگ کو آپ صرف اشارہ کر لیں گے وہ سمجھ لیں گے اور مان لیں گے, بعض لوگ پہ آپ ساری زندگی لگا دیں وہ نہیں مانیں گے. کر کے دیکھ. ہاں جی, آپ ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا اٹھائیں گے, دوسرا حل کریں گے تیسرا اٹھائیں گے. میں الیکشن والوں کے ساتھ ذرا پھرا ہوں کسی دور میں, ظاہر ہے وہ ایک عالم کھڑے تھے ان کے لیے, تو میں نے ان سے یہ طریقہ سیکھا کہ وہ آخری وقت دن جو ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو دعوت دیتے ہیں ووٹ کے لیے, تو اس میں وقت کو ضائع نہیں کرتے. جس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اس نے نہیں ماننا, اس کو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. بات کر کے جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ماننے والے نہیں ہے, ہم آگا ٹکرنے والا ہے, تو بس ان کو اچھی طرح بات کر. اس لیے وضع خاتم الجاہلون قالوا سلاما, یہ تو آئے ہوئے نا, جب جاہلوں کے ساتھ آپ کا مطلب جو تو پھر وہ کہہ دے بس السلام علیکم. ہاں جی, کیونکہ ظاہر سارے لوگوں کو سمجھانا ناممکن ہے. ہاں یہ بات ہے, جن کو سمجھ آ سکتی ہے ان کے اوپر بھی آپ نے اتنا کرے تو پھر سستی ہے. اس میں ایک بات میں اور بھی عرض کر سکتا ہوں, بہت اہم بات ہے. طالب جو ہوتا ہے, جس میں طلب ہو سیکھنے کی, ماننے کی, اور وہ آپ کے پاس خود آ جائے, تو اس کا حق زیادہ ہے اس شخص سے جس کے پیچھے تم جاتے ہو اس سے, کیونکہ ابھی وہ طالب نہیں ہے, ابھی تو طالب اس کو بنانا ہے. تو جو طالب ہو کے آیا ہے تو وہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ اس کو پریفرنس دیا جائے. اس کا جو ہے نا وہ دلیل قرآن پاک میں آیت مبارک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن, عبس و تولى عن جهل العلماء وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفع ذكر. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے رؤسا کو جمع کیا تھا بڑی مشکل سے, ان کو دین کی بات سمجھانا چاہتے تھے. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بوجھ آیا کہ یہ تو ہمارا اپنا ہے, کسی اور وقت بھی آپ آ سکتا تھا, اس وقت تو ظاہر ماتے پہ ظاہر اثر آ گئے. تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا. ہاں جی, تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو طالب ہے اس کا حق جا رہا ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر جو خانقاہیں ہیں, اب خانقاہوں میں کوئی تربیت کے لیے آ جائے, پوچھنے کے لیے آ جائے, سمجھنے کے لیے آ جائے, تو آپ ان کو چھوڑ کر دوسروں کو دعوت دینے کے لیے چلے جائیں, وہ کیسا رہے گا؟ ظاہر مطلب ہے کہ ان کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اجتماعی دعوت کے لیے آپ پلاننگ کے ساتھ جائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو ٹیکل کر کے, لیکن یہ بات ہے کہ ان کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہو, ان کو ڈیو ٹائم آپ دے سکیں, یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے پاس آئے تھے نا کچھ لوگ, جی کہتے جی آپ جو ہے نا مطلب ہمارے ساتھ چلے جائیں. تو میں بھی مدرسے میں پڑھا رہا ہوں, تو میں نے مدرسے کسی اور کے حوالے کر کے جو ہے نا میں جا رہا ہوں خدا کے راستے. تو میں نے کہا مدرسے میں اور خانقاہ میں فرق ہے. ہاں جی, مدرسے کو کسی کے حوالے کیا جا سکتے, خانقاہ کو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ والی بات نہیں ہے, مطلب ان کو چھوڑ کر میں کیسے جاؤں. تو یہ بات मतलब यह कि समझनी चाहिए। वाज में किसी को निशाना ना बनाए बल्कि सबको मुखातिब कर, जनरल वाइज हिदायत वगैरह लेने से इज्तनाब करे ताकि बेलोस रहे, इससे काम में बरकत होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा निज़ाम है जी। वो जो है ना वाइज जो होता है वो अगर हिदायत वगैरह लेना शुरू कर लिए तो उसके नियत में भी फितूर आ सकता है और लोगों का मिजाज भी बदल सकता है, यानी इस पर मुतमैन हो जाएंगे, बस ठीक है जी हमने खिदमत कर ली ना, हाँ जी, तो असल चीज़ तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इस वजह से इज्तनाब करना चाहिए। किसी भी शख्स की मजमे आम बहस लाने की जाए क्योंकि इससे उसको वाइस से बोझ हो सकता है जिससे वो जिद पर उतर कर मजीद बिगड़ सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है, अगर किसी को इन किसी पर एतमाद हो कि ये ऐसा नहीं है तो फिर कर सकते हैं। वाइस के लिए सख्ती, ये वाइस के लिए शेख के लिए नहीं है, शेख माल मामला और है। वाइस जो होता है उसको नरम लहजा इस्तेमाल करना चाहिए, और शेख जो है ना वो तो जैसे कपड़े को झाड़ना होता है, उससे सारा गर्द वगैरह निकालना होता है, मैल निकालना होता है, तो वो तो जब धोया जाता है तो उसको पटक पटक कर मारा जाता है तब उससे जो है ना वो मैल निकलता है, ऐसे तो आसानी से नहीं निकलता। हाँ जी, तो ये बात और है। वाइज के लिए सख्ती और दुरुस्ती का तरीका मुनासिब नहीं बल्कि जितनी शफकत और नरमी होगी उतना फ़ायदा होगा। इस पर भी मुखालिफत हो तो तहम्मुल करे, ताकत न हो तो खिताब ख़ास की बजाय सिर्फ खिताब आम पर इक्तफा करे। इस पर थोड़ी बहुत अगर बात हो जाए तो इस तरह है कि हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वक़्त में ये चीज़ बहुत नुमायाँ था, मुशफिकाना तरीका, मिन्नत समाजत, दूसरों को अपने से बड़ा समझना, आजिज़ी, इनकिसार, ये बहुत नुमाया थी जुमात के अंदर, तो बहुत फ़ायदा हो रहा था। तो अब ऐसा तरीका बाकी नहीं रहा, अगर है तो बहुत थोड़ा। तो इस वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। जो वाइज है उसको तो बहुत नरम लहजा अख्तियार करना चाहिए। वह मौलाना रहमतुल्लाह को शख्स ने धक्का दे दिया तो नाली में गिर गए, तो बाहर आकर कहा कि हज़रत आप अपने तो जो करना था कर लिया, अब तो मेरी बात आप सुन सकते हैं, आप तो मेरी बात सुन लिया। तो यार पत्थर को भी कभी दिल फंसी जाता है, ये मैं इस किस्म की आजिज़ी हूँ। तो ये बात है कि वो जितनी नरमी होगी वाइस की बात में तो उतना ही ज़्यादा असर होगा। बाकी जो मशायख है तो तरबियत के लिए तो उनके पास ले जाना है, तरबियत तो खुद नहीं करनी। ये तो हमें मौलाना मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाया था, फरमाया कि देखो याद रखो बुजुर्ग दोस्त, जो हमारे पास आते हैं जुमात में तो हमने इकराम करने, हमने इनकी तरबियत नहीं करनी, तरबियत तो मशायख करते हैं। मसाइल उलमा बताते हैं, तरबियत मशायख करती, दो बातें हमें सिखाई जाती थी, मसाइल उलमा बताते हैं और तरबियत मशायख करते हैं। क्योंकि अगर जो आदमी ख़ुद तरबियत करना शुरू कर लेगा और उसको उसने तस्लीम नहीं किया तो फसाद ही होगा। हाँ जी, तरबियत तो आप उस वक़्त कर सकते हैं जब उनके साथ, जब वो आपके साथ मुनासिबत रखता हो और इसके लिए तैयार हो। हज़रत मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह का एक साथी थे, काफ़ी अरसा उनके साथ रहे, एक दिन हज़रत ने सोचा कि माशाल्लाह अभी काफ़ी वक़्त मेरे साथ गुजारा है तो अब ये बात समझ सकेंगे, तो उन्होंने उनको डैडी की तरगीब दी। अगले दिन वो शख्स गायब हो गया। गायब हो गया तो 3 दिन तक हज़रत को नींद नहीं आई इस तकलीफ़ में, और कहते हाय ठंडे तवे पे आटा डाल दिया तो आटा भी ज़ाया हो गया। तो बात बिल्कुल यही है कि जो जुमात का अंदाज़ है वो नरमी, शफ़क़त, मोहब्बत, इसका अंदाज़ है। लेकिन अल्लाह पाक ने चूंकि कुरान में अमर बिलमारूफ़ और मुनकर का काम दिया है, तो अमर बिलमारूफ़ अगर कोई कर रहा है और समझता है कि मैं इसको कर सकता हूँ लेकिन अमर मुनकर नहीं कर सकता हालात की वजह से, तो जो कर रहे हैं उनको बुरा भी ना समझे और ख़ुद बिलमारूफ़ करें। तो इस तरीके से माशाल्लाह वो लोग अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, इस तरीके से माशाल्लाह बराबरी हो जाएगी। तबलीग का तरीका, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुशसलीबी से, असलूबी से नियत करके दावत दो। अगर बहस की नौ बताए तो इनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। सबील रब से मुराद अल्लाह ताला तक पहुंचने का रास्ता है, जो कि हज़रत हदीस शरीफ सिर्फ इस्लाम है, बस उसकी तरफ बुलाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें बताई, दावत बिल हिकमत, दावत बिल मौइज़तिल हसना, मुजादिला बतरीका अहसन। गुफ्तगू में 2 चीज़ें होती हैं, एक अपने दावा पर दलाइल कायम करना और दूसरा मुखातिब के दलाइल का तोड़ और इब्ताल। पहले को दावत बिल हिकमत कहते हैं, हाँ जी, और दूसरे को मुजादिला, हाँ जी, मतलब ये वाली बात। तो ये काम वाला माँ का है, जारे वही कर सकते कि जो है ना, मतलब अपने दलाइल बयान करना और दूसरों के दलाइल का तोड़ करना। दूसरों के दलाइल का तोड़ करने के लिए उनके दलाइल का जानना ज़रूरी है ना, उनके दलाइल का आपको पता नहीं तो कैसे तोड़ेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी को दूसरों के मसाइल याद नहीं होते, नहीं मतलब उनको मालूम होते, वो उनके ऊपर बात करना शुरू कर ले, वो आपके बारे में जानता है, वो आप ही का दलील आपके खिलाफ इस्तेमाल करके मामला सारा खराब कर। हाँ जी, ऐसा होता है क्योंकि मुनाजरे के उसूल होते हैं। मुनाजरे में आप अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते, उसूलों के मुताबिक बात करनी होती है। तो कोई ख़ास वक़्त दिया जाता है, उसमें आपको अपनी नज़रें पेश करना होता है, उसके दलाइल देने होते हैं। फिर जब दूसरे के बारे में उसमें फिर नहीं बोलना होता, हाँ जी, फिर उनकी बात पूरी बतानी होती है, फिर आपने उनकी बातों को सुनकर उनका जवाब देना होता है। मतलब इस तरीके से, वरना फिर तो शोर होता है, फिर तो मुजादिला नहीं होता, फिर तो महज शोर होता है जिसमें कोई भी नहीं जीतता और कोई भी हार नहीं मानता, बस सिर्फ एक शोर और गोगा होता है। बस मामला उसी तरह का रहता है जिस तरीका होता है, उसमें किसी का खैर नहीं होता, सबका नुकसान ही होता है। समझ में आई ना बात, जब इस किस्म का मनाजरा हो तो उसूलों के साथ अगर हो तो फिर क्या करेंगे आप, उनकी बातें सुनेंगे, फिर आप अपने दलाइल कायम करेंगे उस पर, अपनी बात पर उनका तोड़ करेंगे, वो आपको जवाब दें, आप उससे बाकी लोग असर लेंगे। अलबत्ते इसमें एक बारीकी है, उस बारीकी का किसी के पास इलाज नहीं है, और वो बारीकी ये है कि उलमा दलाइल देते हैं और महाकम आवाम करते हैं। ज़ाहिर वो आवाम भी उससे असर लेते हैं ना कि किसकी माने किसकी न माने। तो अब उलमा दलाइल दें तो अब इसका मतलब दलाइल आपने ऐसे दें जो आवाम को भी समझ आ सके, आपके अपने हरीफ के जो तोड़ करेंगे तो इस तरह करें कि आवाम को भी समझ आ जाए। इस तरह नहीं करना कि बस आप अपने इल्मी तौर पे ज़बरदस्त किस्म के हैवी मज़े वजनी वजनी दलाइल दे अरबी के लिहाज से, तो आवाम को तो कुछ पता नहीं चलेगा आपने क्या कहा। हाँ जी, तो ये मतलब दायरे हर चीज़ के अपने उसूल होते हैं। तो इसमें ये बात होगी कि पहले अपने दावा पर दलाल का और फिर दूसरे जो मुखातिब है उसके दलाल का तोड़। तो पहले को हिकमत कहते हैं, दूसरे को मुजादला। अब एक तो जावेद के तौर पर बताने, जैसे कि डंडोरची बादशाह वक्त का हुक्म लोगों तक पहुंचाता है कि इसका हादसा इसका इसके साथ कोई वास्ता नहीं होता, ताकि कौन इस पर अमल कर कौन नहीं। बल एक बाप का बेटे को समझाना है कि इसमें गैर शफकत होती है, और इस तरीके से बात कीजिए कि बेटा किस तरीके से मान ही ले। शफकत के पहलू मतलब यहाँ आता है, मतलब यह है कि आपने जस्ट ऐलान करना है, तो ऐलान करने से ज़ाहिर कोई किसी ने माने किसी ने नहीं माना उससे उसको कोई गरज नहीं होती, लेकिन इसने पहुँचाना ज़रूर होता है। और दूसरा ये बात है कि नहीं, आपको कुड़न होती है कि मान ही ले, इसमें गैर शफकत होती है। इस तरीके से बात की जाती है कि बेटा किस तरीके से मान ही ले, इसके लिए चाहे उसको कितनी तकलीफ उठाने पड़े खुद समझा कर छोड़ता है, क्योंकि बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका बेटा खैर से मारूम हो जाए। यही मौजदुल हसना की असल है कि वाइज इस तरीके से बात कर ले कि मुखातिबीन का दिल पिघल जाए और अमल के लिए तैयार हो जाए। वो जाब्ते की खाना पूरी नहीं करता, यही अंबिया का तरीका। जैसे कि आप सल्लम का इरशाद हुआ कि आप सल्लम ने भी तमाम ज़िंदगी इस पर अमल करने का हक अदा किया, अल्लाह ताला हमें भी तमाम ज़िंदगी इस तरह करने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए हर वाइज को आफियत के साथ लंबी उम्र सही फहम और सही नीयत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।